मथुरा की रमणियां कह रही हैं। युद्ध भूमि में, कंस के रणभूमि में, रंगभूमि में कृष्ण और बलदेव पधारे हैं। चारों ओर मुष्टिक से युद्ध होने जा रहा है और ये मथुरापुरी की रमणियां, जादव रमणियां कृष्ण के रूप को देख करके बड़ी दुखित हो रही हैं कि ऐसा सुंदर मनोहर रूप, इतने सुकुमार इनके अंग कमल और इतने बड़े बड़े अश्व राक्षस जैसे, वज्र जैसा इनका शरीर, बड़े भीम काय शरीर, और इन दोनों बालकों से लड़ रहे हैं इन्हें मार डालने के लिए, और इस समय हम इनका दर्शन कर रही हैं। और उस समय में वो कहने लगी, गुप्य तपस् की माचरण जदमुष्म रूप लावण्य सार असमोद धनन्य सिद्धम दृघ भी पिबंत अनुसवाभिनवम दुराप एकांत धाम जस सिया ऐश्वर्य। हो इस जगत में कोई धन्य है तो ये गोपियां, ब्रज की रमणियां गोपियां ही धन्य है। विश्व में ऐसा किसी का सौभाग्य नहीं है, इसलिए यदि धन्य है तो ये ब्रज रमणियां ही धन्य है। दिग्जादव किशोर इज टेकन टू टेल सीन कृष्ण रेसलिंग विथ टू डेमन्स चारुण एंड मुष्टि। गोपियों का ही जीवन धन्य है, क्यों? जब वो कृष्ण को दर्शन करती हैं किशोर अवस्था में, लावण्य सार असमोर्धानन्य सिद्धम, लावण्य की चरम सीमा असमोर्ध, जिसके समान और कोई विश्व में सुंदर नहीं है, न उनके समान है, न कोई होगा, न है। वो अपने आंखों से कृष्ण के इस माधुर्य किशोर अवस्था के रूप को, लावण्य को पान कर रही हैं। आंख से पान नहीं किया जाता, किंतु ये पान कर रही हैं। कैसे पान कर रही हैं? अभिनव नित्य नवीन नवीन रूप में उस रूप माधुर्य का ये पान कर रही हैं। एकांत धाम जस सहस्त्रिय ऐश्वर्य, जो एकांत धाम ऑफ जस श्री ऐश्वर्य, तीन का कहा किंतु इसमें षड़ लगा दो, षड़ ऐश्वर्य के ये आधार हैं, किंतु इनका यह षड़ ऐश्वर्य एकदम छिप जाता है, आच्छादित हो जाता है उनके रूप माधुर्य, वाणी माधुर्य, वेणु माधुर्य इत्यादि के द्वारा असमूर्ध रूप में उसका ये पान कर रही है। कौन? गोपियां। हम लोग अभी देख रहे हैं इनको, वही रूप है, किंतु आज इनके हाथों में बंसी मोर मुकुट इत्यादि नहीं, स्वाभाविक सौंदर्य निखर करके नहीं आ रहा, दैत्य इनको मारना चाहते हैं, अभी क्रोध से मुख उनका लाल हो रहा है, आंखें तनी हुई हैं, भ्रुकुटी तनी हुई है, रोष की अवस्था में इनको हम देख रहे हैं, हम दुर्भागी हैं। परीक्षित महाराज जी श्रीमद् भागवत से मिलन में गोपियों की क्या स्थिति है इसका पहले वर्णन किया। मिलन में इनको कितना आनंद होता है, लावण्य सार असमर्थ अनन्य का ये पान करती हैं जो कोई नहीं करता। मिलन में उनको ऐसा सुख होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, किंतु विरह में इनकी क्या स्थिति होती है गोपियों की, अब उसका वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, ये उसकी भूमिका है। दोनों का वर्णन किए, पहले मिलन में गोपियों का कैसा सुख होता है, उसकी जगत में कोई तुलना नहीं, असमर्ध असम ऊर्ध बराबर नहीं है, और वैसा कोई है नहीं और न होगा, ऐसा सुंदर रूप को गोपियां नित्य नवीन रूप में प्रति क्षण क्षण में पान करती हैं अपने नैनों से, ना? अच्छा, नैनों से पान कर रही हैं, किंतु आस्वादन कौन कर रहा है? उनका सदैव आस्वादन कर रहा है, मुख से पान करते हैं किंतु कौन इसका टेस्ट लेता है? हृदय जुड़ा जाता है, ना? एस्पेक्ट। इस तरह से अब उसका वर्णन करके अब ये दे रहे हैं, ये गोपियां ये मिलन में तो इनको इतना सुख होता है, तो विरह में कैसा दुख होता होगा। कहे नहीं दुख नहीं, मिलन में जैसा उनका सुख होता है विरह में भी उससे भी अधिक आनंद का अनुभव करती हैं, उसका एक चित्रण इस श्लोक में दे रहे हैं, है ना। इसलिए सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं एक सखी सहेली जादव पत्नी जादव किशोरी रमणी कह रही है दूसरी से सखी, देखो सुनो ये जो विदग्ध शिरोमणि जो कृष्ण है, कृष्ण का नाम नहीं लेती, क्यों नहीं, प्रियतम के रूप में देख रही है, ये विदग्ध शिरोमणि के लीला कैतुक की वैचित्री को ब्रज सुंदरियां साक्षात रूप में दर्शन करते हैं। कौन है इस समय कोई डिस्टर्ब न करे। जादो हने वहनने मथलो फलेप, क्यों कह रहे हैं इसके लिए, इस श्लोक की अवतारणा किस लिए की गई, पहले मिलन का वर्णन करके गोपियों का उसमें सुख का, अब ये वर्णन कर रही हैं विरह में, विरह में गोपियों की कैसी दशा होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो मिलन में कैसा होता है इसका पहले मतलब, लावण्य सारभूत असमोर्ध सर्व विलक्षण क्षण क्षण में नूतन से नूतन परम मनोहर रूप को गोपियां अपने नैने से पान करके असमोर्ध आनंद को प्राप्त करती हैं, जो कृष्ण को भी नहीं होता इतना आनंद, जितना गोपियों को होता है कृष्ण को नहीं होता। कृष्ण को देख करके उनकी माधुरी का पान करके गोपियों को जितना रसस्वादन जिस उच्च कोटि का होता है भाव में विभोर हो जाती हैं, मिलन में ही विरह अनुभव करती हैं, प्रेम वैचित्र उनको हो जाता है। होता तो है द्वारकावासियों को भी गोपी वहाँ की, किंतु इतने उच्च कोटि का प्रेम वैचित्र नहीं होता, बहुत उन्नत प्रकार का। तो अब विरह में उनकी क्या दशा होगी उसी का ये वर्णन कर रही हैं। तब वो क्या होता है, कभी इनके नाम गुण और गाथा का कीर्तन करती हैं, कब विरह में करने लगे, मिलन में भी करती हैं। कैसे मिलन में करती हैं, मिलन में कैसे करती हैं, मिलन में करती हैं राष्ट्रस्थली में जब दोनों का राष्ट्र करते हैं सभी गोपियों के साथ में, उस समय कृष्ण गान करते हैं, गोपियां उससे ऊपर सप्तम में लेकर के करती हैं, तो गोपियां कहती हैं साधु साधु। उस समय में कृष्ण क्या ज्ञान करते हैं इसमें दिया है, क्या ज्ञान गान करते हैं, शरत चंद्र का वर्णन करते हुए कृष्ण गान करते हैं, कौमुदी कौमुदाकरम कीर्तन करते हैं पंचम स्वर से और अपने वेणु में भी। और गोपियां क्या करती हैं, गोपियां करती हैं उस समय में उन्हीं का नाम कीर्तन करने लगती हैं। कृष्णदास जी हैं, कृष्णदास कहाँ चला जाता है प्रवचन के समय, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदनंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कैसे सुर से कहाँ गया कृष्णदास, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गिरिवर धारी जसोदा दुलाल, गिरिवर प्यारे नंदनाल प्यारे नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, ये मिलन में और गान करते हैं कैसे भाव में भी भोर हो जाती होंगी। और उस समय कृष्ण कहते हैं इनको कहते हैं साधु 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 परस्पर दूसरों को, ये मिलन में आनंद का क्या कौमुदी कौमुदी कौमुदाकरम, ये चंद्र के लिए कौमुदी को के आनंद को बढ़ाने वाले ये चंद्र हैं, अपनी किरणों से इनका पालन पोषण करते हैं, इनके आनंद को वर्धित करते हैं। अब इसको गोपियाँ इस रूप में समझिए, कौमुदी हम हैं और कौमुदी कर्म वो कौन है, ये कृष्ण है। इस रूप में लेकर के फिर वो कीर्तन के रूप में उसको दोहराती हैं। कितना दोनों में आनंद होता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती एक दूसरे को। इस तरह से ये तो कहते हैं मिलन में हुआ। अब कृष्ण के दर्शन में भी गोपियां प्रेम में निमग्न हो जाती हैं और उनकी ऐसी स्फूर्ति होती है विरह में कि कृष्ण मानो सामने हैं। और कृष्ण का उस समय में साक्षात भी कभी कभी करती हैं, कभी कभी विरह में रोती भी हैं, किंतु रोती तो हैं तो क्या करती हैं, हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ प्राण प्रेष्ठ, ये जब कहती होंगे तो कृष्ण क्या करते रह सकते हैं कहीं, क्या करते होंगे, वो आ जाते हैं ये समझती हैं जैसे हम देख नहीं रहे, स्फूर्ति हमें हो रही है, किंतु कृष्ण साक्षात जा जाते हैं और जैसे मिलन में आनंद होता है वैसे ही ये अनुभव करती हैं ये कृष्ण उनको मना रहे हैं ऐसा देखने लगती हैं। कभी कभी हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नम उद्धर गोविंद गोकुलम ब्रिजिनार्थ, उद्धव जी कर ऐसे कह करके एकदम भाव में विभोर करते मूर्छित छू जाती हैं। हे नाथ माने प्राणनाथ, हे रमानाथ ऐसे पुकारती हैं। जब भक्तों के ही पुकार से कृष्ण आ जाते हैं तो गोपियों के पुकार से रह सकते हैं, कदापि नहीं रह सकते, वो जरूर आ जाते हैं। जैसे सची मैया जहाँ इच्छा की कि हमने इतना सुंदर बनाया रसोई और निमाई बेटा हमारा नहीं है, तो सचमुच में आ गए और सब कुछ खा गए। उन्होंने देखा जैसे वो तो बेटा तो हमारा है नहीं, तो वो खाया कैसे देख रही है। और फिर इसके बाद में फिर से रसोई बना करके फिर से भोग लगाने जाती हैं, भूल जाती हैं सब। तो गोपियाँ जब इतने विरह से उनको पुकारेंगी तो बिना ऐसे रह सकते हैं, कदापि नहीं रह सकते, असंभव है ये बात। उस समय में कृष्ण इनको कृष्ण के लिए पुकारती हैं और कृष्ण आ जाते हैं और फिर कृष्ण तन्मय हो जाते हैं इनकी सेवा में। इसलिए कहते हैं कि विरह में भी वो ऐसा ही समझती हैं ये कृष्ण हमारे निकट है देख, किंतु पीछे भूल जाती हैं और कहती हैं जैसे कृष्ण को तो मैंने देखा नहीं। ये भी एक तरह से आनंद है। यह आनंद लाखों कोटि विश्व के जितने भी सुख हैं उसे 1,001,00,000 से गुणा कर देने पर भी उस दुख में जो गोपियों को आनंद होता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसको शब्दों से नहीं समझाया जा सकता है, इसको भजन मार्ग के द्वारा समझा जा सकता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ सनातन गोस्वामी जी उसकी व्याख्या में, अर्थात अदर्शन में भी साक्षात्कार के नया एकदम सामने कृष्ण से ऐसी उनकी प्रतीति होती है। साधक ऐसे ही भजन करे तन्मय हो जाए, ये कीर्तन के माध्यम से होगा, दूसरे रूप में नहीं हो सकता है। मिलन में भी कीर्तन, विरह में भी कीर्तन, विशेष करके विरह में कीर्तन, अर्थात साधन मार्ग में कीर्तन की प्रधानता और स्मरण उसका अनुगामी है। इन्होंने ऐसा ही सनातन गोस्वामी ने किया है, इसलिए ऐसा भजन हो ये भजन मार्ग का माने सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। अभी हम लोगों तो साक्षात्कार तो होगा नहीं, किंतु विरह की अनुभूति हो उसी को बतला रहे हैं। जे जादोहने वहनने इस श्लोक में बतला रहे हैं क्या करती हैं विरह में, कृष्ण गोचारण के लिए चले गए, उस समय का श्लोक ये बतला रही है कौन, मथुरापुरी की स्त्रियां बतला रही हैं, उसका वर्णन कर रही हैं। जबकि कृष्ण गोचारण के लिए चले गए तो गोपियां क्या करती हैं, क्या करती हैं, अरे वो माला ग्रंथन करती हैं अपने हाथों से सुंदर सुंदर, उसमें तुलसी के पत्ते लगा देती हैं, उसमें पांच रंगों की फूलों की, जिसमें जूई, जूथी, मालती इत्यादि सफेद वाले और कुछ दूसरे रंग वाले भी, और तुलसी उसके साथ में मंजरी समेत, जिस पर भ्रमर होते हैं उसको बना रही हैं, बना करके कभी बिगाड़ती हैं, लेकर के अपने में देखा, दर्पण में देखा, यदि ठीक है तो ठीक है, नहीं तो क्या किया, फिर बिगाड़ करके फिर बना रही हैं। कितने घंटों उसमें लग जाते हैं और तन्मय होकर के देख रही हैं, अपने गले में दिया है और देख रही हैं कि आज ये कृष्ण के हम गले में दे रहे हैं, कैसा सुंदर लगता है, कैसी उनकी भावना है ना। उसमें जबकि माला ग्रंथन करती हैं तो वो क्या कर रही हैं, उधर गान करती हैं और इधर में भावना करती हैं, इधर हाथ में काम करते हैं, सभी काम एक साथ में चल रहे हैं। माला ग्रंथ इत्यादि कार्य की बातें तो दूर रहे क्या करती हैं, रसोई बना रही हैं, किसके लिए, मनोहर लड्डू बन रहा, उस समय में जो श्रीमती राधिका कृष्ण के विरह में इनके ताप से पसीने की बूंदे टपक रही हैं, मोतियों की तरह में झड़ रही हैं, और उनको इतना ताप लग रहा है जिसका कोई हद नहीं, और जब मनोहर लड्डू बना रही हैं कृष्ण के लिए, वो किया शरीफ सरपुरी मनोहर लड्डू और क्या अमृत खेली बना रही हैं, और एक साथ में 10-20 चूल्हे चारों तरफ लग गए हैं, उनकी आँच आ रही हैं, और उस समय मालूम से हिम से भी सुशीतल, परम आनंद लग रहा है, उसमें ताप में भी आनंद होता है, ये पसीने झड़ रहे हैं तब उनको मालूम नहीं होता, उनको परम आनंद होता है। इसकी तो बात छोड़ो, ये कृष्ण के विरह में है मनोहर लड्डू इत्यादि जो बना रही हैं, किसके लिए बना रही, चिंतन कहाँ हो रहा है, और यहाँ पर है ऐसा ही साधक भजन करे, उनका चिंतन करे, साधारण साधकों के लिए ये बात नहीं है, ये विशेष यदि कुछ उन्नत है ऐसे परम भक्तों के लिए है, विशेष करके राधानुगा भक्तों के लिए। कभी कभी क्या करती हैं, गायों का दोहन करती हैं, कभी कभी आंगन लेती हैं, अपने अंगों को भूषित करती हैं, जाएंगे कृष्ण से मिलने के लिए, उस समय आभूषण इत्यादि धारण कर रही हैं, लेपन कर रही हैं चंदन इत्यादि अपने अंगों में, और उस समय में ऐसे ये कृष्ण को अंग में लगा रही हैं, ऐसा सुख अनुभव करती हैं ये, और उस समय में कृष्ण का नाम गुण कीर्तन इत्यादि करते हैं। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर। कभी कभी उसी समय अपने बच्चों को थपथपी देती हैं, कभी रसोई कर रही हैं, तो कृष्ण में मनोनिवेश कहाँ उनका, संभव है एक साथ में 10 काम कर रही हैं तो कृष्ण में मनोनिवेश कहाँ से रहा, यह प्रश्न हो सकता है, मनोनिवेश संभव नहीं। अरे भाई एक आदमी जा करके देखो ना, तो हटा करके रख ही देना, तो ये कैसे है? कैसे संभव है, ये संभव है कैसे संभव है, उरुक्रम है ना, उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम मैंने क्या, जिनका विक्रम बहुत बड़ा है, अघटन घटन अघटन घटन पेटी शक्ति वाले हैं, जो संभव नहीं है दूसरों के लिए वो भी उनके लिए संभव है। तो जैसे मैं उनका नाम करती हैं तो कृष्ण उनके अंदर में आते हैं कि नहीं, शरीर में तो उनके लिए उरुक्रम वो भी बन जाती हैं, एक साथ में बच्चे को थपथपी भी दे रही हैं, इधर का काम का चिंतन बना कर रही हैं, मनोहर लड्डू भी बन रहा है, हाथ काम भी कर रहा है, इसमें चिंतन भी हो रहा है, भावना में भर भी रही हैं। एक व्यक्ति के लिए संभव पर नहीं है, किंतु उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम का की शक्ति उनके अंदर में, उरुक्रम ही मानो जोग माया के द्वारा ये सब एक साथ में संगठित करते हैं, ये दूसरों के लिए कदापि संभव नहीं है। ये सनातन गोस्वामी जी इसकी टीका में बतला रहे हैं। कहते हैं कि मथुरावर्ती पुरुष स्त्रियां जो हैं, उनकी दृष्टि में जो ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्त जाना कह रही हैं, ये किस लिए कह रही हैं? उनके लिए युक्त युक्त है। क्यों? ये मथुरा और वृंदावन में जाता आत करने वाली कुछ स्त्रियां हैं, जैसे फल विक्रेता है, कभी कभी दूसरे लोग हैं जो ब्रज से कृष्ण का की रूप महिमा, वेणु महिमा, उनकी ये सब जो लीलाएं हैं आकर के द्विज इनको वर्णन करते हैं, है ना? उस समय कृष्ण के लिए तरसती हैं कौन? मथुरा वाली। उस समय विरह की अनुभूति कुछ करती हैं, इसलिए विरह की अनुभूति के वजह से ब्रज स्त्रिया कहा, ये हमारी जैसी दशा उससे कोटि गुण उनकी दशा होती है, और कृष्ण को हम देख रही हैं, हमें सुख तो है किंतु दुख भी हमें है, दुख इसलिए इस अवस्था में हम देख रही हैं। तो गोपियां स्वच्छंद रूप में कृष्ण के इस कैशव रूप का जो अनन्य असमोद्ध रूप है, इसका दर्शन करके कितना आनंदित होती होंगी, इसलिए ब्रज स्त्रिय शब्द का अपने हृदय के अनुसार में इसकी अभिव्यक्ति की है। क्योंकि साधारणतः ब्रज स्त्री कहने से ब्रजवासी प्रेषियों को ही बोध होता है, समझो जैसे, और नहीं, हाँ, वन्य पुलिंद स्त्रियों को भी समझना चाहिए ब्रज स्त्रिय, ब्रज की जो पुलिंद की लड़कियां हैं, किशोरियां हैं, कृष्ण के लिए वो विरह में उन्मत्त होकर के उनके चरणों की रज जो कि कुमकुम से मिश्रित, उसको अपने शरीर पर धारण करके विरह की अनुभूति उसमें उनकी दूर हो जाती है, विरह की दुख ज्वाला को भी वो भूल जाती हैं, इसलिए ब्रज स्त्रिया कहा है। अथवा द्विवा भाग में भगवान के साथ वन में नहीं गमन करने के कारण ब्रज में वो अवस्थान करते ये कर रही हैं, इसलिए ब्रज गोपियों के संबंध में उनके भावों को अभिव्यक्त कर रही हैं। ये विरह में भी उनका मिलन होता है और उस विरह में एक ऐसे सुख को अनुभव करती हैं जिसकी हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते, किंतु सारे सुखों के सिर पर वो सुख नृत्य करता है। कितना बजा? अब बस आज यहीं रहे, कल इसका विशेष जो है मैं बतलाऊंगा। लो एक कीर्तन करो तो।